राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत से इंतजार के बाद में आपका इस सुंदर स्थान में स्वागत है। इस स्थान का नाम क्या है? चंद्र सरोवर। चंद्र सरोवर श्री गिरिराज के परिक्रमा के दीर्घ परिक्रमा के हिस्से में आता है। दीर्घ परिक्रमा जो लंबी वाली 40 किलोमीटर वाली, एक परिक्रमा है 22 किलोमीटर की जो अंदर के रास्ते से चलती है। और ब्रजवासी लोग दो टाइप की परिक्रमा करते हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी यानी राधा कुंड से दान घाटी तक, मानसी गंगा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, दान घाटी, उद्धव कुंड करके वापस राधा कुंड, ये छोटी वाली बोलते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, फिर दान घाटी से शुरू करते हैं, दान घाटी, फिर दान निवर्तन कुंड, फिर गोविंद कुंड, पुचड़ी का लौटा, सुरभि कुंड, ऐसा करते फिर वापस दान घाटी मार्केट में आते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। गौड़िया वैष्णव जो करते हैं वो पूरी कर लेते हैं एक ही बार, फास्ट चले बिना रुके तो 5.5 घंटे में कर सकते हैं 22 किलोमीटर। थोड़ा रुक रुक के कथा थोड़ी थोड़ी बोलते करेंगे तो फिर 6 आवर्स लगेगा, और अच्छी तरह कथा करके तो 14 घंटे भी लग सकते हैं। हमने एक बार शुरू किया था 6 बजे और फिर हर जगह पे इत्मीनान से कथा करते हुए ऐसे बैठते हुए रात को 10:30 को हमने समाप्त किया मानसी गंगा पे। और उसका नियम ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी ये नियम रखा है कि वो मानसी गंगा में स्नान करना है और हरिदेव भगवान का दर्शन करना है और वहीं से परिक्रमा शुरू करनी है, और फिर सभी स्थानों को देखते हुए वापस वहीं लौट के आना है, फिर आचमन करना है और प्रणाम करना है और परिक्रमा समाप्त करनी है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने गौरव गोवर्धन का परिक्रमा किया है? जय हो। गोवर्धन की परिक्रमा जो है उसका मतलब है कि गोवर्धन के चरणों की पूजा करना, ये गोवर्धन की परिक्रमा का अर्थ है। परिक्रमा करना किसी भी तुलसी की कर रहे हो, भगवान की कर रहे हो, तो चरणों को आप पूजन कर रहे हो। भले आपके हाथ में दीपक या अगरबत्ती नहीं होगी, लेकिन जब आप परिक्रमा दे रहे हो इसका अर्थ होता है कि आप उनके चरणों का पूजन कर रहे हो। तो सबसे पहले गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा किसने की? स्वयं भगवान ने। जब भगवान ने सब लोगों का मतलब इंद्र की पूजा कैंसिल करवाया ना भगवान ने, तो उन्होंने सब लोगों को वो सारा जो इंतजाम था ना इंद्र की पूजा का, वो सारा इंतजाम उन्होंने कहा कि गोवर्धन की पूजा में लगाओ, डाइवर्ट करो वहाँ से। तो वहाँ पर जब भोग बनाए गए तो सारा अन्नकूट कहते हैं उसको, अन्नकूट का मतलब क्या होता है? अन्न यानी अन्न, कूट का मतलब क्या होता है? कूट यानी पर्वत, कूट का मतलब होता है पर्वत, त्रिकूट पर्वत मतलब क्या? 3 शिखर वाला पर्वत, त्रिकूट पर्वत, तो कूट यानी पर्वत जैसी अरेंजमेंट। तो अन्नकूट यानी भगवान ने जितने व्यंजन बनवाए वो पहाड़ के रूप में भोग लगवाए, जितने भी ड्रिंक्स थे ना वो सब हौद में रखे, कुएं की तरह दूध दही लस्सी जूसेस सब अर्पण किए भगवान ने, सब चीज पर्वत के समान थी। और वो जब भोग लगाया तो उसके पहले भगवान ने कहा कि हम गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं, तो भगवान ने उसका नेतृत्व किया और सभी ब्रजवासियों ने भगवान के पीछे सबसे पहले गिरिराज की परिक्रमा लगाई। और फिर जब आए तो फिर गिरिराज स्वयं बने, वो जब भोग लगाया ना घंटी बजी तो वो स्वयं गिरिराज बने। लोगों ने देखा अरे तो कृष्ण है, देखा अरे बाजू में भी खड़े हैं, उधर भी हैं उधर पूरा पर्वत समान रूप धारण करके ऐसे ना ऐसे सब खा लिया उन्होंने एक एक झटके में, और कुछ ही क्षणों में सब पर्वत गायब हो गए, सब हौद खाली हो गए। और ये इतना भी ठीक था, ओके बहुत बनाया बहुत खाया, आनी और दो वे और कहाँ से लाए। आप सोच सकते हैं ब्रजवासी लोग कितने शरणागत हैं भगवान से, भगवान ने कहा जितना भी घर में सामान है सब लेके आओ। इसका मतलब कल के लिए नाश्ते में थोड़ा सा रवा उपमा थोड़ा छोड़ के मत आना, समझे आप? कल का क्या होगा, कल लंच में और ब्रेकफास्ट में और रात को डिनर में, नथिंग। सब गोदाम खाली कर दिए उन्होंने सबके घर से, केवल भगवान के एक आदेश के अनुसार। देखो आप कितना भाव है उनका, उनको इतनी विश्वास श्रद्धा है भगवान के ऊपर कि वो बोल रहे ना वो करना चाहिए, वो देख लेंगे आगे सब, ये विल सी। इतनी श्रद्धा होने पर ना जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होती। एक बार जिसने हमको तकलीफ में सहारा दिया है उसको बार बार हम पूछते नहीं है कि इस बार भी दोगे ना। मम्मी को पूछते हैं क्या, ब्रेकफास्ट तो दिया, लंच भी दोगी ना, मैं स्कूल से आऊँगा तो डिनर भी दोगी ना, ऐसा पूछते हैं क्या आप कभी घर में? आपको तो श्रद्धा है ना कि अभी तक दिया है आगे भी देंगे। जब मैं ऐसा कहीं से गिरा था बाहर तो मुझे पता नहीं था कहाँ पर हूँ और कौन से होल से क्या द्रव निकल रहा है, मुझे पता नहीं था। उस समय से मुझे देखभाल कर रही है वो, आई डिडंट नो व्हाट वाज कमिंग आउट ऑफ विच होल एंड शी वाज टेकिंग केयर ऑफ मी। तो अभी तो मैं तो सयाना हो गया, अपने आप चलता हूँ, खेलता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो श्रद्धा सबसे बड़ा विषय है। अब ब्रजवासियों के अंदर श्रद्धा जो है ना निष्ठा के रूप में ठोस के भरी हुई है। इतनी श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा है, इसने ही बोला था कि मत करो इंद्र की पूजा, गोवर्धन की पूजा करो, तो हमने इसकी बात मान लिया। देखो क्या हो गया, इतनी वर्षा हो रही है, जान चली जा रही है, सब गाय भय सब बस भय के जा रही है, घर भी भय रहे हैं सब, इतना भयंकर आतंक किया उसने। और अभी हम उसको ही पुकार रहे हैं। देखो आप पुकारेंगे ऐसे, जिसने आपको तकलीफ का कारण बनाया उसको आप सहारे के लिए पुकारेंगे क्या? अरे इसने तकलीफ दिया इसको क्या बोलना है, चलो किसी को बोलो। और वो क्या बोल रहा है, चलो मेरे साथ। तो लोग ऐसा नहीं बोल रहे, अभी कहाँ ले जा रहे हो, पहले तो इतना समय गड़बड़ कर दिया तुमने, अभी कहाँ ले जा रहे हो? वह उसके पीछे जा रहे हैं, और क्या करेगा पता नहीं, इतना सब हालत, चलो बोलते हैं, सब लोग जा रहे हैं उसके पीछे पीछे। और किसी को पता नहीं था क्या करने वाला है, आपको पता है, बच्चा भी बोलेगा पता है उसके बाद में, देखो उधर पुली लगाई, पुली वो खींचेगा ना ये पर्वत ऊपर जाएगा, तो ऐसा खड़ा रहेगा वो, ऐसे बच्चे भी बताएंगे आपको, इतना सबको पता है आज। लेकिन याद करो उस समय का जिसमें घनघोर वर्षा हो रही है, जान चली जा रही है, पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा, इतना भयंकर आतंक है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधेरा ठंड वर्षा सब नष्ट हो रहा है, जो भी था वो सब नष्ट हो रहा है। उसमें भी ये बच्चा अभी बोल रहा है उधर चलो, तो जा रहा है उसके पीछे, क्या करेगा पता नहीं, हाउ ही विल सॉल्व नोबडी नोज। लेकिन श्रद्धा का भंडार इतना भरा हुआ है ना, तो भगवान ने फिर किसी को पता नहीं है क्या करने वाले हैं, लेकिन भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया। उसके बीच में ना वो ग्वाल बाल ने पूछा उनको क्या करोगे आप, तो वो कहते हैं कि मैं गिरिराज को उठाऊंगा। जब अभी अब शामोहन प्रभु का लड़का है गौरांग है ना, बेटा क्या करोगे, नहीं मैं बिल्डिंग उठा लूंगा, आप चिंता मत करना, बिल्डिंग उठा के यहाँ से यहाँ रख दूंगा, और फिर साफ सफाई कर लेना, फिर बिल्डिंग को उठा के यहाँ रख दूंगा। तो आप क्या करेंगे, जोर से हंसेंगे ठाका मार के क्योंकि ऐसी बात कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही बोल रहे कृष्ण कि मैं उठाऊंगा उसको। तो बोले कैसे उठाओगे, विश्वास नहीं हो रहा है, तो अभी समय तो नहीं है लेकिन कोशिश करूंगा ले जाने के। वहां पर उधर एक पेड़ है बहुत बड़ा कदम का, वो भगवान ने ना ऐसा ना कपड़े की तरह निचोड़ दिया उसको, ऐसा सोच सकते हैं। एक तो पकड़ में आना चाहिए ना पहले बाद में निचोड़ना है उसको, है ना, ऐसा पकड़ के ना पूरा निचोड़ दिया उसको कदम के पेड़ को। तब बाल बालों को विश्वास हुआ कि ये करेगा कुछ। फिर वहां से गुफा में घुसे, उसका नाम है प्रविष्ट गुफा, जिसमें उन्होंने प्रवेश किया। उस प्रविष्ट गुफा में अंदर गए और नीचे से पर्वत को उठाया, पहले हथेली पे उठाया, फिर छोटी उंगली में खड़ा कर दिया उसको ऐसे। तो भगवान अनाकलनीय चीज कर सकते हैं, यानी जो हमको समझ में नहीं आ सकता है, हमारी कल्पना के परे हैं, वो सब चीज़ भगवान कर सकते हैं। इसलिए भगवान को पूछते समय चिंता मत करना वो कैसे करेंगे, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो ऐसा उपाय ढूंढ के निकालेंगे कि आप भी दंग रह जाओगे, कैसे किया उन्होंने ये। तो ये बात सब कहाँ से निकली थी, परिक्रमा से। तो वो परिक्रमा जो है ना, वो छोटी और बड़ी वाली टोटल मिलके 22 वाली, और एक है दीर्घ परिक्रमा 40 किलोमीटर वाली, जो हमारे सनातन गोस्वामी रोज किया करते थे। 70 साल की उम्र हुई फिर भी चल रहे हैं, चलने को नहीं हो रहा है फिर भी चल रहे हैं। तो श्री कृष्ण को भी दया आ गई, श्री कृष्ण को भी दया आ गई, तो वो बालक बन के उनके साथ में आके, बाबा क्यों चल रहे हो अभी, इतनी साल कर लिया बहुत हो गया अभी। नहीं बेटा वो तो मेरा नियम है, मुझे करना ही है। नहीं, बस अभी आपने बहुत कर लिया, तो नहीं मान रहे। और वो चल ही रहे हैं, उनके पीछे बालक दौड़ ही रहा है, अब दौड़ते दौड़ते बातें हो रही, लेकिन वो चलते रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। तो वो बालक गायब हो गया अचानक, वो स्वयं कृष्ण भगवान थे। तो वो गए गोवर्धन के ऊपर, खड़े हो गए और उन्होंने मुरली बजाई। जैसे ही मुरली बजाई तो जिस शिला पर खड़े थे ना गोवर्धन के, पत्थर पर, वो पिघल गई मुरली के प्रभाव से, और उनके चरणों के निशान गिरे उसके ऊपर। ऐसे खड़े होते ना वो, एक आधा एक पूरा, और फिर लकुटी भी है उसमें। उतने में गाय भाग भाग के आती है, जैसे हमेशा आती है मुरली की तान सुनकर, तो गाय का भी चरण उसके ऊपर, वो पत्थर भी पिघल रहा है। तो पूरा पत्थर तैयार हो गया, जब उनने मुरली बंद की बजाने की तो पिघलना बंद हो गया, तो चरणों का निशान वैसे ही रह गया। दो चरणों का निशान, एक लकुटी का निशान, एक गाय के खुर का निशान। वो खुद ही उठाया अभी शिला उन्होंने, वो जाके बाबा को दिया, बाबा ये शिला का परिक्रमा करो, 4 बार करो तो गोवर्धन परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। उस रात में कृष्ण सपनों में आए उनके, और बोले वो बालक मैं ही था, अभी आप ये परिक्रमा करना बंद करो और ये शिला का अपने कमरे में 4 प्रदक्षिणा करो, आपका नियम भी पूरा हो जाएगा और लाभ भी पूरा मिलेगा आपको। तब से वो फिर अपने घर पे करने लगे। और जब वो, मैंने कहा ना आपको, चक्रेश्वर महादेव पे उन्हीं ने शरीर छोड़ दिया, उधर ही वो शिला थी। तो जब वो चले गए तो फिर वो जीव गोस्वामी उनके वंशज मतलब वारस थे, तो उनके मंदिर में अभी वो शिला है धरोहर के रूप में। जैसे होता ना चाचा की प्रॉपर्टी भतीजे को मिलती है, पिताजी की बेटे को मिलती है, वैसे वो शिला जिसमें ये सब चिन्ह है, इतने बड़ा, इतना बड़ा चरण कमल है, इतना बड़ा, इतना मोटा है सब पैर, एक पैर पूरा, दूसरा आधा मुड़ा हुआ, गाय के खुर का निशान और लंबी लकुटी का निशान भी है, बहुत बड़ा। और उसकी पूजा करते हैं गोवर्धन के रूप में। तो ऐसे गिरिराज जी हैं। तो फिर गिरिराज ने सब वो खा लिया ना पूरा, उसके बाद में दोबारा प्रकट किया जितना भी रखा था, और बताया कि कैसे बांटना है, किसको किसको कैसे कैसे बांटना है। बहुत सुंदर वर्णन दिया है, पहले जो बीमार हैं, फिर वृद्ध हैं, फिर बच्चे हैं, फिर जो भी इनवैलिड है सबको पहले, उसके बाद सक्षम लोगों को बाद में। लेकिन इतना मात्रा में प्रसाद था कि सब लोग पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया उन्होंने, बहुत आनंद रहा इस उत्सव में। कुछ देर की बात थी, इसके बाद में वर्षा शुरू हो गई। दुनिया में कैसे होता है ना, सुख दुख यहां पर चलते रहते हैं। सुख है तो दुख आने वाला है, दुख होगा तो भी सुख बाद में आने वाला है, रात आएगी तो दिन आने वाला है, और दिन भी बहुत देर टिकने वाला नहीं है, वो भी रात आने वाली है। ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है, इसमें आश्चर्य की बात कुछ नहीं है। अभी इतना आनंद क्या, ऐसे पूरे ब्रज लीला के अंदर इतना आनंद का प्रसंग शायद ही कहीं होगा जितना गोवर्धन लीला में आया। इतने सारे लोग एकत्र हैं उसके अंदर, सब अंदर है, सब मिल रहे हैं। कभी भगवान अकेले को मिलते थे, ग्वाल बालों को अकेले, गोपियों को अकेले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे रसों के भक्त एकत्र हो गए गोवर्धन के अंदर। और भगवान ने सभी रसों के भक्तों के साथ में एक साथ बड़ी कुशलता से आदान प्रदान किया, बड़े प्रेम का आदान प्रदान किया, बहुत ही सुंदर। फिर वर्षा समाप्त हो गई, फिर पर्वत नीचे रखा, फिर सब लोग आए, इंद्र ने पश्चाताप किया, फिर अभिषेक किया भगवान का। ऐसी सुंदर लीला है ये। तो ये जो गांव है इसका नाम है पारासौली, लेकिन वो भी अपर ब्रह्मच है, रियल वर्ड है परम रास स्थली, परम रास स्थली, जिसको लोकल लोग पारासौली पारासौली कहते हैं, लेकिन वो है एक्चुअली भगवान के परम रास की स्थली है। भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में नाच नृत्य किया था, सबसे पहले बंसी बजाकर गोपियों को बुलाकर सबसे पहले रास लीला का नृत्य जो है वो वृंदावन में बंसी भट्ट के किनारे किया था, जमुना किनारे। लेकिन जब वसंत ऋतु आया वो शुरू कब होता है? वसंत ऋतु शुरू कब होता है? वसंत पंचमी के दिन से। वसंत पंचमी से वो ऋतु शुरू होता है। सब जगह पर नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं, सब जगह बहुत रंग बिरंगा वातावरण होता है। उसी दिन से ब्रज में होली शुरू होती है। हमारे यहाँ एक दिन होती है, ब्रज में 40 दिन की होती है। वसंत पंचमी से रंग उड़ना शुरू हो जाता है और वो हमारी धुलैटी तक चलता है। और बीच में एक बड़ा उत्सव आता है, रंगीली होली। वो नवमी के दिन होता है, फाल्गुन शुद्ध नवमी के दिन। उस समय लट्ठामार होली खेलते हैं। एनीवे, वो विषय बहुत गहन विषय है, उसको अभी छुएंगे तो रात हो जाएगी यहाँ पर। तो ये जो पारस होली है यहाँ पर, जब वसंत ऋतु आया तो वसंत ऋतु की बहार देखकर, वसंत ऋतु का आरंभ होने के बाद में तो पंचमी है ना, 10 दिन के बाद में पूर्णिमा आई, तो वसंत ऋतु खुल रहा है और पूर्णिमा का पूर्ण चांद्र भी आ गया है। ये देखकर सबके मन में दोबारा भाव जागृत हो गया कि अभी दोबारा रास नृत्य करना चाहिए। तो भगवान ने दोबारा मुरली बजाई, लेकिन इस क्षेत्र में बजाई, इस जगह पर। सब गोपियाँ आई, सब कृष्ण भगवान आए और उनका रास नृत्य शुरू हुआ। तो इतना सुंदर नृत्य हुआ कि इनके पास में ऐसे अद्भुत वाद्य थे, हाँ, चरणों के नुपुर पायल एक वाद्य है, उससे वो म्यूजिक, हाँ, रागदारी के साथ करते थे, कंगन बजाते थे ऐसे, और भी वाद्य बजाते थे, लेकिन ये भी बहुत अद्भुत वाद्य थे उनके पास। यशोदा माई जब मथन दूध का करती थी ना, दही का, तो उनके कंगन का भी ऐसा एक म्यूजिक हुआ करता था, बहुत सुंदर, एकदम सुश्राव्य कहते हैं उसको, वेरी ब्यूटीफुल टू हियर, इस तरह का संगीत उत्पन्न होता था। तो जिस तरह से इनका नृत्य शुरू हुआ और इतना सुंदर ताल, इतना सुंदर स्वर, इतना सुंदर संगीत कि आकाश में सब गंधर्व इकट्ठा हो गए, किम पुरुष इकट्ठा हो गए, किन्नर इकट्ठा हो गए, यक्ष इकट्ठा हो गए, जो भी संगीत में माहिर देवता है, सब देवता आकाश में इकट्ठा हो गए और कोशिश करने लगे कैसे सुर मिलाया जाए। लेकिन कल मैंने बताया ना आपको, कल थे क्या आप? नहीं, कल नहीं थे। तो उनका सुर इनके सुर से कभी मिला ही नहीं, देयर वाज ओनली डिस्कॉर्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? केओस। वो कुछ कर रहे हैं अपनी कोशिश, अपने पराकोटि की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बज रहा है, यहाँ जो हो रहा है, उसका तालमेल नहीं कर पाए। वो यही दिखा देता है कि ब्रज का जो आनंद है ना, वो देवताओं के पास पर भी नहीं है। यहाँ पर जो संगीत की कुशलता है, गाने की कुशलता है, नृत्य की कुशलता है, यहाँ पर जो हर एक चीज़ की कुशलता है, वो देवताओं को प्राप्त नहीं है। ऐसा ब्रज का आनंद है। तो ये नाचते रहे कृष्ण भगवान के साथ में। कृष्ण भगवान ने सभी गोपियों के साथ में अपना रूप प्रकट किया और सबको लग रहा था कि मेरे साथ ही नाच रहे हैं। और उसमें जो स्वेद निर्माण हुआ, हाँ, इस सब शब्द को याद रखना, स्वेद, पसीना नहीं, भगवान के और गोपियों के शरीर से दिव्य स्वेद निकलता है जिसमें सुगंध आती है। इतनी दिव्य सुगंध आती है कि उसको देखकर देवता लालायित हो जाते हैं, इतनी दिव्य सुगंध। कभी कभी उनको मिलती है, उनको यहाँ पर एंट्री नहीं है, वो ऊपर से देख रहे हैं, नो एंट्री, यू कैन नॉट कम इन साइड, दूर से देखो, बालकनी से, पास में आने का काम नहीं कुछ, हाँ, क्योंकि देवता है ना, ऐश्वर्य वाले ना, माधुरी में क्या काम है उनका, फिर भी आते देखने के लिए। तो वो दिव्य जल जब भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ, सब गोपियों के शरीर से भी उत्पन्न हुआ और यहाँ पर इकट्ठा हुआ और एक सरोवर बनने लगा, उसका सब बह रहा है जल और उसका दिव्य जल से सरोवर बन रहा है। तो वो चंद्रमा भी पूर्ण था, है ना, पूर्ण देख रहे ना वहाँ पर। तो चंद्रमा इतने प्रभावित हो गए ना, इतने प्रभावित हो गए उसको देखकर, इतने मोहित हो गए, इतने क्या प्रसन्न हो गए, आनंद से भर गए कि उन्होंने, उनके पास अमृत का स्टॉक रखा करते हैं, मतलब अमृत जब निकाला ना समुद्र से, तो जो भी बांटा उसका बचा हुआ जो, तो उनके पास तो ट्रेजरी किया गया। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ बूंदे डाल दी इस जल में, ये सोचकर कि यह आनंद जो है ना कभी भी नष्ट ना हो, बना रहे इसको, लेट इट बी ऑलवेज एग्जिस्टिंग इटर्नली। तो अमृत की बूंदे डाली उसके अंदर, फिर वही बात, फिर भगवान ने चंद्र सरोवर, ये जो सरोवर है इसके किनारे ब्रह्मा की एक रात तक नृत्य किया और आश्चर्य की बात यह है कि चंद्र जो है ना, उसका काम क्या है? अपनी कक्षा में घूमना ना। अभी समझा, अभी आप चल रहे हो यहाँ से बरसाने जा रहे हो, और रास्ते में कोई शादी का दिखा है, दर्शन दिखा, आपको जाते जाते देखना है, रुक के देखने का काम ना, आपको काम है वहाँ पर। ऑन द वे, बाय द वे, जितना दिख रहा है उतना देख लो और आगे चले जाओ। लेकिन ये अपना कक्षा छोड़ के वहीं रुक गए, ऐसा वर्णन आता है कि चंद्र जो है ना वो उधर ही रुक गए, पूरी रात भर एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर। उसके बाद में केवल रुके नहीं, वो और इतने प्रभावित हो गए कि खुद वो पिघल गए और इस सरोवर में डूब गए, अपने आप को एक रूप कर दिया इस जल के साथ में। इसलिए नाम पड़ा है चंद्र सरोवर। एक तो जिसको देखकर चंद्रमा अपनी जगह पर खड़े रह गए, और दूसरी जगह उसमें पिघल गए, और इतना सुंदर सरोवर यहाँ पर उत्पन्न हो गया। तो जब ये चंद्र सरोवर का परम रासस्थली नाम पड़ा, उसके बाद में यहाँ पर जो रास हो रहा था ना, जब शुरुआत हुई तो बल्लू भैया को, बलराम दादा को खबर मिल गई कि अभी ये नृत्य शुरू करने वाले हैं, तो वो वहाँ से आए, गोवर्धन के ऊपर चढ़े, और गोवर्धन से वो देख रहे हैं यहाँ पर नृत्य को। लेकिन अगर खड़े हो गए ना, तो शायद उनको वो देखेंगे कि भैया देख रहे हैं, तो वो ना दंडवत की पोजिशन में गए। ओके, इसको ढोक कहते हैं, ढोक, राजस्थान में दंडवत को ढोक दो, ढोक बोलते हैं, ढोक। हाँ, तो ढोक दंडवत के रूप में ऐसे मुड़ के झुक के ऐसे देखने लगे। लेकिन वो जो आनंद वहाँ पे हो रहा था ना, वो इतना दिव्य था, इतना दिव्य था कि उसके देखने मात्र से इनके शरीर में विकार उत्पन्न होने लगे, अष्ट विकार, अश्रुधारा, गदगद कंठ, रोमांच, और लास्ट क्या है, स्तंभ। उसके आगे बेहोशी भी है, लेकिन उसके पहले स्तंभ, मतलब लकड़ी की तरह शरीर बन जाता है, यू बिकम लाइक वुड, हाँ, इमूवेबल। तो वो वैसे हो गए, वो स्तंभित हो गए पूरे। इसलिए आज भी जहाँ पर, वहाँ पर एक गुलाबी शिखर है, मैं दिखा रहा था इनको, उधर है गुलाबी शिखर, दिखाई पड़ रहा है एकदम मेरे उंगली के साथ, देखो स्ट्रेट। तो एक गुलाबी शिखर अभी धुंध में गया थोड़ा सा, वो गुलाबी शिखर जो है ना, वो मंदिर है बलराम जी का, जहाँ पर उनको झुकने के बाद में उनका मुकुट गिर गया, और मुकुट के स्पर्श से शिला पिघल गई, और मुकुट उसके अंदर एम्बेड हो गया, एम्बेडेड। तो उधर मुकुट शिला भी है, जो बलराम जी के दिव्य आनंद के प्रभाव से पिघल गई, उसके अंदर उनका मुकुट घुस गया, और वो जहाँ पर थे, वो भी उनकी मूर्ति वहाँ पर, एक ही मूर्ति दुनिया में ऐसी मूर्ति है जो दंडवत के रूप में, स्वयं जिसको हम दंडवत करना चाहिए, वो खुद दंडवत की पोजिशन में। तो क्या नाम है उसका, ढोक दाऊजी, जो ढोक देने की पोजिशन में वहाँ पर है। इसी भाव से है कि छोटे भैया को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो आनंद बरस रहा है वो बरसते रहना चाहिए। वैसे ही रास, ये जो राधा कुंड है ना, मैंने बताया ना आपको अभी प्रवचन में, कि बलराम जी वहां पर खड़े हैं कुसुम सरोवर के पास, भाव यही है। तो ये सबका भाव ना हमको पकड़ना चाहिए। जितने व्यक्तिमत्व का वर्णन होता है, वो हर एक व्यक्तिमत्व, हर एक पर्सनालिटी का एक भाव है ब्रज में, और वो भाव से ही ब्रज है। बाकी वातावरण तो है ही दिव्य, उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है ना यहाँ पर, जो भाग लेते हैं भगवान की लीला के साथ, उनका अपना अपना खुद का दिव्य भाव है, जिसके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं, और वो दिव्य भाव के आदान प्रदान के वजह से ब्रज लीला का निर्माण होता है, ब्रज लीला प्रकट हो जाती है। और जब प्रकट होती है तो सभी को आनंद देती है वो, जो पार्टिसिपेंट है उनको मिलता आनंद, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको आनंद मिलता है। अब ये रास में तो सम्मिलित तो नहीं हुए, लेकिन इनको भी संभ विकार का आनंद प्राप्त हुआ। बहुत आनंद होता है जब अश्रु बहते हैं, कंठ गदगद होता है, रोमांच खड़े होते हैं, बहुत आनंद होता है उस समय, दिव्य आनंद। जो शरीर में जो भी आपने अनुभव किया ना आज तक, खाने पीने का आनंद है, शरीर का कपड़े पहनने का है, मान सम्मान का आनंद है, वो सबके परे है वो आनंद, दुनिया के मान सम्मान के भी परे हैं, दुनिया के लोग आपके चरण छूते होंगे, उससे भी परे आनंद है वो आत्मानंद। तो इन व्यक्तियों के साथ परिचय, उनके भाव को समझने का प्रयास हमको करना चाहिए, तब जाकर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अभी आगे की कथा भी करने वाला हूँ, यहाँ के आगे जहाँ पर मैंने बता दिया आपको, वहाँ पर भगवान ने वो कदम को ऐंठ दिया ना, उसका नाम क्या है? ऐठा कदम। और गांव का नाम क्या है? पेठा। और पेठा का एक्चुअल वर्ड का मतलब नाम क्या है? प्रविष्ट वन। उसका लोकल नाम पेठा है, लेकिन गांव का नाम मतलब पौराणिक नाम जो है वो है प्रविष्ट वन, क्योंकि उस वन में भगवान ने प्रवेश किया, फिर एक गुफा में प्रवेश किया, वो प्रविष्ट गुफा। अच्छा, बीच में क्या हुआ? ये जो कुंड उत्पन्न हुआ, तब भगवान हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। तो कुछ देर बाद में हर गोपी को लगा, देखो गोपियों का स्वभाव कैसा है, वो भगवान के साथ नाच कर रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि और भी कोई नाच कर रहे हैं, उनको केवल भगवान के ऊपर फोकस है पूरा, उनको बाजू में क्या हो रहा है पता नहीं है। हमको हमारा जो काम चल रहा है वो छोड़ के सब पे पता ध्यान रहता है हमारा, है ना, दूसरा क्या कर रहे हैं, हमको जो खिला रहे हैं ना। अभी आप कभी देखो पंगत में बैठे हो ना आप, तो आपको कुछ दिया जा रहा है, लेकिन आपका अधिक ध्यान दूसरों के प्लेट पर रहता है कि उनको क्या दिया जा रहा है, और ज़्यादा दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं, उसको 3 दिया मुझे 4 दिया, या 3 दिया मुझे उसको 4 दिया, ये सब मोर देन योर प्लेट, योर अटेंशन इज टू अदर प्लेट। तो वैसे हमारा सेवा में बेस्ट रहता है, अपनी सेवा छोड़ के सबकी सेवा में हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं, लेकिन गोपियों का ऐसा नहीं है, एब्सॉर्प्शन, फुल एब्सॉर्प्शन, इतना कि करोड़ों गोपियां नाच रही है, बाजू में ही सब नाच कर रही है, लेकिन आपको पता नहीं है क्या चल रहा है, आपको तो ध्यान कृष्ण के ऊपर है, पूरा चित्त जो है ना वो उसमें लगा हुआ है। तो उनको ऐसा भ्रम हुआ कुछ देर के बाद में, शुरू में जो सब साथ में आए थे उनको पता था कि आई वॉज विथ ऑल द गोपीज, बाद में ऐसा स्थिति हो गई कि मेरे ही साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, सबको छोड़कर, ये पहले अनुभूति हुई, भ्रम में हुई, लेकिन पहले अनुभूति हुई कि ओनली विथ मी, उसके बाद भी अनुभूति हुई कि मैं कितनी महान हूँ, मैं कितनी स्पेशल हूँ, देखो सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, थोड़ी देर नहीं कितने घंटे हो गए, मैं जरूर कुछ स्पेशल हूँ कि सबको छोड़कर मेरे साथ समय बिता रहे हैं। जैसे ही ये अहम पैदा हुआ ना, भगवान अंतर्धान हो गए, तुरंत अंतर्धान हो गए, और सारी गोपियां बताने लगी, पता है आपको मेरे साथ नृत्य कर रही थी सबको छोड़कर, तो दूसरी वाली भी बोल रही है कि मेरे साथ भी नृत्य कर रहे थे सबको छोड़कर। तो कुछ देर बाद में उनको होश आया कि सबके साथ में थे, मेरे अकेले के साथ नहीं था, नथिंग स्पेशल इन मी, ही वॉज विथ एवरीबडी, लेकिन दुर्भाग्य से हमने गर्व किया तो अभी वो किसके साथ भी नहीं है, एवरीबडी लॉस्ट हिम इंक्लूडिंग राधा रानी, राधा रानी भी उनका संग खो बैठी। तो आचार्य समझाते हैं कि सबसे बड़ी भगवान को दूर ढकेलने की जो बात है ना, वो अहंकार वाली है, अहंकार से भगवान को हम दूर भगा देते हैं, जब अहंकार आता है तो भगवान दूर चले जाते हैं, और अहंकार जब नष्ट होगा, नम्रता आएगी तो पास चले आते हैं, बाकी दुर्गुण बहुत सारे होंगे लेकिन नम्रता होगी तो आ जाते हैं तुरंत, बाकी दुर्गुणों को फिर खुद नष्ट कर देते हैं, लेकिन अहंकार होगा और बहुत सद्गुण होंगे तो भी वो नहीं रहेंगे वहां पर। तो फिर वो अभी रोने लगे, अरे गलती तो कर दिया हमने गर्व करके, चले गए किधर है किधर है, सब ढूंढ रहे हैं, वृक्षों को पूछ रहे हैं, बिल्लियों को पूछ रहे हैं, पंछियों को पूछ रहे हैं, वन्य देवताओं को पूछ रहे हैं, जो भी है ना यहाँ के वन्य देवता, ग्राम्य देवता, सबको पुकार रहे हैं, पुकारती गली गली, सब पुकार रहे हैं, कहाँ गए कान्हा, कृष्ण कहाँ गए, कोई जवाब नहीं दे रहा है, रो रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, ढूंढे ढूंढे पागलों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि कुछ करते हैं, जरा भगवान भी गायब हो गए थे ना, उनको भी जरा सा विरह के अनुभव होने लगा था, ऑलरेडी छोड़ के आए थे वो, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा मजा कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण किया और रास्ते में खड़े हो गए। अभी आपको अगर चलते चलते विष्णु मिल गए रास्ते में तो आप क्या करेंगे, सब लोग प्रणाम करेंगे ना, बोला अच्छे लोग आप, तो वो खड़े हैं रास्ते में, तो वो भी विष्णु का पूजन करने वाले थे, मतलब भगवान कृष्ण उनके साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में माता पिता जो है ना अधोक्षज विष्णु, ऐसे विष्णुओं की पूजा करते थे, जब भगवान का संकट आता तो विष्णु को वो मन्नत मांगते थे कि इन बच्चे को बचाओ, नरसिंह भगवान को पूछते थे, नंद महाराज, अधोक्षज विष्णु, ऐसे बहुत सारे विष्णुओं को, तो उनको पता था कि विष्णु परम भगवान है, वैकुंठनाथ है वो, और वो सामने खड़े हो गए लेकिन उनकी एकाग्रता और भगवान के ऊपर अंतर्लीनता इतनी महान थी कि उन्होंने लिखा है कि उन्होंने दंडवत किया, लेकिन दंडवत करने में उनका इतना मन नहीं था, लेकिन पूछने में मन था कि आपने कहीं हमारे कृष्ण को देखा है, उसको ही पूछते हैं। वो बेचारे बोलते हैं इधर गए, उनका भाव देखे, वो भी वो अंदर जो कृष्ण है ना छुपे हुए, वो उनका हृदय ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसा ही हाथ उठा के बोलते कि इधर चले गए। सब गोपियाँ भागती उधर। उसके बाद में राधा रानी लास्ट में आती है, और राधा रानी है ना इतने गहरे भाव में है कि एक भवरा उनके खिलाफ ऐसे सामने गोल गोल घूम रहा है, तो भवरे को सोच रही कृष्ण है ये, तो उसको वो बुरा भला कठोर शब्द बोल रही है, तुम कितने निष्ठुर हो, कितने क्रूर हो, छोड़ के जाते हो, ऐसा करके 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 आ रहे। अचानक विष्णु को देखते, भवरा भी गूंज रहा है, गोल गोल घूम रहा है, विष्णु को देखते, और विष्णु को जब पूछते ना कि आपने कहीं कृष्ण को देखा है, तो वो इतना तीव्र भाव था उनका, इतना तीव्र भाव था कि वो देख कर ना भगवान की दो भुजाएं पिघल गई और वो उनकी इच्छा के खिलाफ कृष्ण हो गए। वो विष्णु बनकर रहना चाहते हैं अपने प्रभाव से, लेकिन वो अपना जो ऐश्वर्य प्रकट कर रहे ना, वो इनके माधुर्य के सामने पूरा डिफीट हो गया। उनको पता ही नहीं चला कि कब मैं कृष्ण हो गया, वो लग रहा है कि मैं अभी विष्णु ही हूं, लेकिन वो कृष्ण हो गए थे ऑलरेडी। और जैसे ही प्रकट हो गए ना कृष्ण, उनके नीचे एक विशाल कमल पैदा हो गया, उनके चरणों के नीचे, कमल के नीचे क्षीर सागर प्रकट हो गया, क्योंकि विष्णु है ना, वो क्षीर सागर में निवास करता है। क्षीरोदक साई विष्णु प्रकट हो गए थे, वो उन्होंने रूप दिखाया था क्षीरोदक साई विष्णु का, तो क्षीर सागर प्रकट हो गया, उसके बीच में कमल में ये खड़े हैं, और तब उनका जो रूप था वो मेंटेन नहीं कर पाए वो। तो ये बार बार घटना होती है ब्रज में, ऐश्वर्य को बार बार माधुर्य आके डिफीट करते रहता है, यहाँ पर ऐश्वर्य टिक नहीं पाता है। भगवान ने मुख खोला, मैया ने मुख में देखा, अरे बाप रे तो विष्णु है, मैंने सोचा था मेरा बालक है, मैं डंडा दिखाती हूँ, डांटती हूँ, क्या क्या करती रहती हूँ, आज पता चला कि ये विष्णु है, इसके मुँह के अंदर पूरे ब्रह्मांड है, खुद को भी दिखती है मुँह में झाँकते हुए। तुरंत भगवान समझकर पूरा अरे बाप रे पश्चाताप करती है, प्रार्थना करने लगती है और माफी मांगने लगती है। तो भगवान को ये भाव जो बदला हुआ है ना, वो अच्छा लगता नहीं, थोड़े समय के लिए ठीक है, तुरंत मुंह बंद करते हंसते हैं पूरा। जैसे ही भगवान की मीठी मुस्कान देखते हैं ना, जो देखा सब भूल जाते, याद ही नहीं है। एक बार भगवान ने उनको दशावतार दिखाया, कुछ ही क्षण के बाद भूल गए। एक बार राम अवतार दिखाया मेहरानो गांव में, तुरंत भूल गए। तो टिकता ही नहीं है ऐश्वर्य। जैसे आप देखो गर्म दूध लेके आओ ठंड के मौसम में, अरे उसको खोलते खोलते ठंडा हो जाता है, कितना भी गर्म करो कुछ देर बाद देखो ठंडा। वो बद्रीनाथ में हम गए थे ना, तो ऐसे चूल्हे के सामने ही खड़े थे, इतनी ठंड थी, बोले गर्म गर्म दे दो, लेकिन वो जब तक रोटी देगा और हम तोड़ेंगे उसको और मुँह में लाए ठंडा, मतलब वातावरण में ठंड इतनी तेज है कि आपकी तरफ से कितनी भी गर्मी पैदा करोगे तो वो फेल हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर माधुर्य का इतना प्रभाव है कि जरा सा ऐश्वर्य दिखाए तो वो टिकता ही नहीं है, वो खत्म हो जाता है पूरा, ऐसा धाम है ये। तो वहाँ पर पेठा गांव में चतुर्भुज नारायण का मंदिर है, लेकिन वो चतुर्भुज नारायण नहीं है, वो कृष्ण है। जैसे सूर्य कुंड पे सूर्य का दर्शन है, वो सूर्य देवता नहीं है, वो कृष्णदेव कृष्ण भगवान सूर्य बनकर खड़े हो गए थे, क्योंकि राधा रानी उनसे बात कर रही थी सूर्य पूजा के बहाने, सूर्य पूजा करने के बहाने गई थी वहाँ पर बहाना बनाकर, और कृष्ण से मिलकर बात कर रही थी। तो उधर खबर मिल गई कि ये उधर बात कर रही है, तो उसके पुलिस लोग पहुँच गए वहाँ पर, तो जैसे ही वो आवाज़ आ गई कि नणंदी और सासू आ रही है, तुरंत ये सूर्य भगवान बन गए और ये प्रार्थना करने लगी। उसको भी आश्चर्य हुआ कि अचानक कृष्ण को क्या हो गया, लेकिन वो समझ गए क्योंकि गड़बड़ है और कृष्ण ने रूप बदल लिया है, तो वो सूर्य देवता नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। सब ऐसा ही है जैसा दिखता है वैसा नहीं है। दान बिहारी में पास जाएंगे ना, तो दान बिहारी जो है वो राधा रानी है, और जो राधा रानी है वो कृष्ण है, दान बिहारी दानगढ़ में बरसाने में। तो ब्रज में जैसा दिखता है वैसा चीज होती नहीं है। संत लोग जो समझाते हैं तो अंदर का भाव समझ में आता है और उसका रहस्य भेद हो जाता है, समझ में आता है। इसीलिए ब्रज में संतों का संग करना चाहिए। या संतों ने लिखे हुए शास्त्र पढ़ने चाहिए, तो वो सारा रहस्य भेद कर देते हैं उसके अंदर कि क्या क्या उसमें से हमको सीखना है और क्या इसका रहस्य है, क्या उसका सार है, तो समझाते हैं। एक और बात है कि वो जो चतुर्भुज नारायण का मंदिर है जहाँ पर वो अभी भी खड़े हैं, उसके बाजू में गुफा थी, वो ये प्रविष्ट गुफा थी, अभी उसको बंद कर दिया है क्योंकि कुछ लोग उसमें अंदर चले गए ना, वो गुम हो गए, वापस नहीं आए, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको बंद कर दिया। वो गुफा यहाँ से गिरिराज पर्वत तक है, थी। लेकिन आपको एक रहस्य की बात बताना ज़रूरी है, अभी तो वो जो गुफा का स्थान ओपनिंग है ना, वहाँ से कई किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि वो गुफा में गए और पर्वत उठाया, मतलब क्या हुआ, पर्वत भी वही था ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने 2-4 किलोमीटर अंदर सफ़र किया, फिर बाद में वो गोवर्धन का बेस मिला, फिर वहाँ से उठाया, ऐसा नहीं, गए और उठाया, उसका मतलब क्या हुआ कि पर्वत वहीं पर था, तो आज पीछे कैसे गया। हाँ, वो देखो वो ऐसे था, अभी जब नीचे आया तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, मतलब यहाँ से दूर आया कि नहीं, वैसे अभी तिल तिल नीचे आके वो ऐसे ऐसे नीचे जा रहे हैं, तो जो यहाँ पर था वो अभी यहाँ दिख रहा है आपको, जो इतना बड़ा था वो अभी इतना ही दिख रहा है आपको, ये रहस्य उसका। लेकिन गुफा का मुंह उधर ही है, पर्वत आगे चला गया है। ऐसा सब अद्भुत बातें हैं ब्रज में। तो वो प्रविष्ट गुफा का दर्शन भी हमने किया है पहले, अभी तो बंद कर दिया उसको, बहुत सुंदर सरोवर है, क्षीर सागर कुंड कहते हैं उसको, वो भी है ऐठा कदम। और ये जगह है ना आगे जहाँ से आप चल के आए अंदर, उसके लेफ्ट साइड में सूरदास की भजन कुटी और समाधि स्थल है। सूरदास बड़े इंडिया के, भारत के सबसे प्रसिद्ध सुंदर बहुत ही भाव वाले संत हैं। वो ऐसा है ना कि हमारे जो श्रीनाथ जी महाराज है ना, गोपाल जी जिन्होंने गिरिराज को उठाया, उसको गिरिधारी गोपाल कहते हैं ना, उसको नाथ जी भी कहते हैं, श्रीनाथ जी भी कहते हैं। तो वो श्रीनाथ जी गोपाल के रूप में प्रकट हुए, उनकी जगह है वहाँ पर। माधवेंद्रपुरी को उन्होंने स्वप्न दिया और बताया कि मैं यहाँ हूँ, पत्थर के नीचे हूँ, मुझे निकालो बाहर और ऊपर स्थापना करो। तो वो श्रीनाथ जी महाराज थे हमारे, उनको उनकी साक्ष्य लीला की इच्छा की पूरी पूर्ति नहीं हुई है ना, मतलब आपको खेलना था लेकिन आपको एग्जाम आ गए तो आपको खेलने की इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर और एग्जाम आते गए आप बड़े हो गए, डॉक्टर बन गए, फिर भी आपको लगता है कि एक दिन खेलना चाहिए जाके ग्राउंड में, तो आप जाके खेलते हो बच्चों के साथ। उस तरह से जितना समय भगवान ने यहाँ बिताया अपने सखाओं के साथ में, उनका पूर्ति नहीं हुआ, लगा कि थोड़ा और होना चाहिए, तो भगवान ने फिर दोबारा श्रीनाथ जी के रूप में अपने आप को प्रकट किया, गिरिधारी गोपाल के रूप में। और उनका ये विशेषता है कि उनको स्थापन तो किया गया पर्वत के ऊपर, सफ़ेद रंग का पर्वत मंदिर है ऊपर, स्थापन तो किया, लेकिन वो ड्यूअल रोल खेलते थे, कभी मूर्ति के रूप में रहते थे, कभी प्रत्यक्ष होकर अपने सखाओं के साथ खेलते थे, ये उनकी विशेष। जब कृष्ण बनकर आए तो केवल कृष्ण बनकर ही प्रत्यक्ष रूप में खेलते थे, लेकिन श्रीनाथ जी के रूप में आए तो कुछ समय इच्छा के अनुसार मूर्ति के रूप में लीला करते थे, कुछ समय प्रत्यक्ष जाकर अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। और वो भी अभी अभी की बात है, 500-600 साल पुरानी बात है, कृष्ण भगवान तो 5000 साल पहले लीला समाप्त करके अंतर्धान भी हो गए थे, लेकिन ये अभी अभी की बात है। और अभी अभी भी उनके कुछ सखा जो है, 8 सखा है, उसको कहते हैं अष्टछाप, वो 8 सखाओं को उन्होंने प्रकट किया, दोबारा जन्म दिया, और 8 सखाओं के साथ में उनकी बहुत सारी लीला है, प्रत्यक्ष लीला है। तो उसमें से शिरोमणि है सूरदास जी, वो है ना पुष्टि मार्गी आचार्य वल्लभाचार्य, उनके 2 पुत्र थे विठलनाथ जी और गोकुलनाथ जी। तो विठलनाथ जी के 4 प्रधान शिष्य और गोकुलनाथ जी के 4 प्रधान शिष्य मिलकर ये 8 बनते हैं। और इसमें उन्होंने पदवी दी है इनको, सागर की पदवी दी है, सूर सागर कहते हैं इनको। हिंदी में कैसे होता है, कवि का नाम होता है उसके अंदर एक होता है इन्वर्टेड कॉमास और कुछ नाम होता है उसके आगे, वैसे सूर सागर यानी ये भक्ति भाव के विषय में सागर की तरह थे, अनलिमिटेड थे। और भी लोग हैं इसमें, कुंभन दास जी हैं, चतुर्भुज दास जी हैं, परमानंद दास जी हैं, चित्त स्वामी हैं, ऐसे 8 लोग हैं। इन 8 के साथ में भगवान ने प्रत्यक्ष लीला किया है। तो सूरदास जी अंधे थे, लेकिन अंधे भी होकर भी वो ठाकुर जी का रोज के श्रृंगार का वर्णन किया करते थे। अपनी जगह यहाँ बैठकर गोपाल जी के मंदिर में क्या श्रृंगार किया उसका पूरा वर्णन करते थे वो। इसका मतलब अंधा होने से कुछ नुकसान नहीं होता है, दिव्य दृष्टि अंधे को भी प्राप्त हो सकती है और अंधे को भी सपना आ सकता है, ध्यान रखना इस बात का। यू आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ हैविंग ड्रीम्स जस्ट बिकॉज यू आर ब्लाइंड। फॉर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट पॉइंट टू नोट। तो सूरदास जी ने यहाँ पर अपने जीवन के 73 साल बिताए हैं, 73 ईयर्स, और यहाँ बैठकर सूर सागर उनके कई ग्रंथ हैं, 24 ग्रंथ हैं उनके, 24 खंड में उसका प्रकाशन किया गया है उनकी रचनाओं का। और ऐसा कोई रस नहीं है जिस रस में उन्होंने पद्य नहीं लिखा है, हर रस का उन्होंने काव्य लिखा है। और ये नहीं कि हम लोग ऐसा यमक से यमक जोड़ रहे हैं, कैसा भी कर स्ट्रगल कर रहे हैं कि टो को टो और पी को पी, हाँ ये उन्होंने काव्य लिखे हैं, जो उनको दर्शन हुआ वो साक्षात लिखते थे। नो स्पेकुलेशन, नो स्क्रिप्ट राइटिंग विथ स्पेकुलेशन, कोई काल्पनिक नहीं था, जो भी काव्य लिखे हैं, जो दिखा वो लिखा। और इनको भगवान ने सभी लीलाओं के दर्शन दिए हैं अंधे व्यक्ति को, और अपने अंतःचक्षु से दर्शन करते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे लीलाओं का वर्णन किया है जो कहीं पर शास्त्र में नहीं मिलेंगे आपको, जो सूरदास जी काव्य में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान मंदिर की मान लीला जो है ना, वो सूरदास ने लिखी हुई है काव्य रूप में। और ये सब जो है सूरदास का साहित्य है, परमानंद दास जी का है, चित्त स्वामी का है, चतुर्भुज दास जी का है, कुंभन दास जी का है, इनका साहित्य ब्रज के लोग गाते रहते हैं हमेशा, अपने प्राइवेट समाज में जो गायन होता है ना वो सब इनके भजनों का गायन होता है। बहुत डीप है वो, समझना भी उनकी भाषा भी मुश्किल है और उसका अर्थ भी समझना मुश्किल है, बहुत डीप। तो ये सब यहाँ पर बैठ के लिखा उन्होंने, उनकी भजन कुटी भी है जहाँ पर लिखा हुआ है, भजन किया है, तपस्या की है, और उनकी समाधि भी वहीं पर है। और एक जगह यहाँ पर जब ये नृत्य हो रहा था ना चंद्र सरोवर का रासलीला, तो इंद्र भी बहुत प्रेरित हो गए और नीचे आए, उन्होंने एक शिला लिया बड़ा और शिला को बजाना शुरू कर दिया म्यूजिक के रूप में। उस शिला से उन्होंने एक जैसे ड्रम की तरह, एक ढोलक की तरह म्यूजिक दिया उसको, उसको कहते हैं बाजनी शिला, बजने वाली शिला। तो वो अभी सूर श्याम गौशाला के अंदर उसका दर्शन है, उधर रखी गई है वो, पहले यहाँ पर थी अभी वहाँ पर चली गई। तो सूरदास जी का ऐसा एक वर्णन है कि वो राधाकुंड में एक जगन्नाथ जी का मंदिर है प्राचीन, वो उनका ऐसा मजाक भी करते थे कभी कभी, तो उनको ले गए, तब पर्दा बंद था, तो कहते सूरदास जी हम आपसे सुनना चाहते हैं कि हमारे जगन्नाथ जी ने क्या पहना है आज। तो वो बोलने लगे, धड़ाधड़ बोलने लगे, हाँ और सुनाओ, और सुनाओ इनके बारे में। तो ये भी मूड में आ गए, उन्होंने पूरा सुनाना शुरू कर दिया। और फिर ये सूरदास जी ना गाली पे उतरे कि इतने नटखट है, ये चोर हैं, ये चोरी करते हैं, ये लड़कियों के कपड़े चुराते हैं, ये बीच रात में नाचते हैं। और फिर बाबा पर पहुंच गए, नंद बाबा के ऊपर, कि इनके बाबा ऐसे हैं कि 85 साल में उनको बच्चे का जन्म देने का इच्छा हुआ, तो उन्होंने तुरंत रोक लिया, उनको पर्दा खोल दिया, बस बस आगे मत जाओ। भाव में आ गए थे ना वो, आप बोल रहे थे वो भी चल रहे आगे, तो जगन्नाथ जी का पर्दा खोल दिया उन्होंने। वो तो अंधे हैं लेकिन जगन्नाथ जी दर्शन कर रहे हैं उनका। और एक बार उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर में गुसाइयों ने क्या किया कि उनका श्रृंगार किया ही नहीं उनको, आप जानते ना श्रीनाथ जी की मूर्ति कैसे, नग्न अवस्था में खड़े हैं कृष्ण भगवान, नेकेड फॉर्म, उसको हम श्रृंगार करते हैं, बंद करते हैं, तो वस्त्र नहीं पहना उनको। और यहाँ आके पूछा सूरदास को कि आज बताओ श्रृंगार क्या किया है, तो उन्होंने ना बहुत सुंदर काव्य किया नग्न भगवान का, तो समझ गए कि ये सिद्ध महात्मा है। ऐसे कई उनके कथाएं हैं। और उधर पेठा गांव में कुंभन दास जी की कथा आती है, चतुर्भुज नारायण के क्षेत्र के पास में। वो कथा ये है कि कुंभन दास जी बड़े वैसे ही श्रेष्ठ भक्त थे, तो वो ऐसे बैठे थे उधर और चिंतन में लीला देख रहे थे। तो उनको क्या दिखाई पड़ता है कि कृष्ण भगवान अकेले एक गोपी के घर में माखन चुरा रहे हैं। सॉरी, मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। श्री कृष्ण भगवान मूर्ति से प्रकट हुए खुद, गोपाल जी बोले कुम्मना चलो। वो एक गोपी है उधर मथुरा में, वो कई दिन से ऐसी प्रार्थना कर रही है, जब मंथन करती है, अभी की बात है ना, मतलब ये अभी वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान की लीला के समय की, अभी 400-500 समय कलयुग की बात कर रहा हूँ। कहते मथुरा में एक गोपी है ब्रजवासी, वो रोज जब मंथन करती है ना दही का, तो प्रार्थना करती है कि कान्हा तुम आ जाओ और मेरे घर का मक्खन चुरा लो। कई दिन से बेचारी प्रार्थना कर रही है, मुझे इच्छा हो रही है उसकी प्रार्थना पूरी होनी चाहिए, चलो तुम। तब तक कुम्भना जो थे बहुत बुढ़े हो गए थे, बहुत बुढ़े हो गए थे। तो बोलते तुम तो मुझे लेके जाते हो कई बार और मैं बुढ़ा हूँ और पीटता मैं हूँ, भाग तुम जाते हो, है ना, तुम तो नटखट बालक हो तुरंत भाग जाते हो और लोग सोचते हैं कि बुढ़ा को देखो कितना बचपना आ गया है। हाँ, चोरी करने घर पे आता है उसको पीटते थे, चलो मैं नहीं आऊँगा। बोले कुम्भना चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं आपको संभाल लूँगा। ऐसा करके खींच खींच के बीच रात में कुम्भना को, कुम्भन दास को, वो गोपी के घर में लेके जाते हैं। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान का भजन नहीं करेंगे तो एक दिन यही बनना है, मेरे एरिया में मत आओ, यही करना है जिंदगी भर। तो रात को कुम्भना को घर में पहुंचा तो अंधेरा था बहुत, तो ये ना पेड़ पे चढ़ गए और कुम्भना को भी जबरदस्त चढ़ाया, और पेड़ पे चढ़ा के खिड़की के खुलवाया खिड़की ऊपर से, और खिड़की से खुद और कुम्भना को अंदर घुसाया रात के अंधेरे में, और लटकते हुए उस मटके के पास पहुंचे। और अभी कुम्भना खड़े है नीचे उस गोपी के कमरे में अंधेरे में, और कृष्ण भगवान ना लटके हुए उस मटके ऊपर, लटक के एक हाथ से लटके हुए हैं और एक हाथ से मक्खन निकाल के खा रहे हैं, और कुम्भना देख रहे हैं और बहुत देर तक देखते हैं। तो क्या होता है पता है, इतने मग्न हैं खाने में, इतने मग्न हैं कि धोती का पीछे का हिस्सा ना, हमारा कैसा होता है पीछे का, वो ढीला होता है और वो छूटने लगता है, और कुम्भना देख रहे हैं कि इसकी धोती छूट रही है, अभी क्या करेगा ये। तो फिर वो इतने मग्न हैं कृष्णा, इतने मक्खन में स्वाद ले रहे हैं, तो उनको वो हाथ छोड़कर ब्रेक लेकर धोती ठीक करने का मूड नहीं है। इतना समय भी धोती छोड़ने को जाएंगे ना पकड़ने को, तो उतना आनंद में बाधा आएगी ना, बीच में व्यवधान आएगा ना, समय आएगा ना बीच में, उतना भी वो उसको छोड़ने के मूड में नहीं है। तो कुम्भना की आंखों के सामने कुम्भना देख रहे हैं, और कुम्भन दास की आंखों के सामने कंधे से दो भुजाएं निकलती है उल्टी दिशा में, पीछे जाती है, धोती को ठीक करती है, वापस गायब हो जाती है, और दो हाथों से मक्खन खाना चलते रहता है। उतने में गोपी उठ जाती है, फिर चिल्लाती है, डंडा लेकर आती है, तो ये अपने ऊपर से खिड़की से तुरंत बाहर चले जाते हैं। और कुम्भना जी बेचारे कुछ नहीं कर सकते, बुढ़े हैं ना, तो लाइट लगाते थे, वो बुढ़ा दिखाई पड़ता है, तो वो पाप तुमने किया सब कुछ, मक्खन खाली किया, तो उसको पीटते हैं। और उधर दूर खड़े हैं सीना जी महाराज अदृश्य रूप में, केवल कुम्भना को दिखाई पड़ रहे, तालियां बजा रहे हैं तालियां। तो फिर वही किया उन्होंने, वादा तो किया कि मैं बचाऊंगा, लेकिन उसको पिटवाया अच्छी तरह से, ताली भी बजाई, बहुत आनंद लिया। तो उसके बाद में भगवान की कृपा से इतनी बुढ़ापे में कुम्भन दास की पत्नी गर्भवती हो गई दिव्य रूप से, ऐसे हमारे जैसे नहीं, बूढ़ी अवस्था में गर्भवती हो गई, और उसने अपने पुत्र का नाम रखा चतुर्भुज दास। विष्णु का नाम नहीं रखा, चतुर्भुज, वो उसने देखा था ना लीला में, जो भगवान ने उसको लीला में बुलाया था, दर्शन दिया था चतुर्भुज, उसका स्मरण था उसको, तो उसने अपने बालक का नाम चतुर्भुज दास रखा। और ये चतुर्भुज दास भी उसमें से एक थे, आठ में से, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, इतने बड़े भक्त थे कि जब भगवान उनको मूर्ति से बाहर आकर मिलते थे तो केवल उनको दिखते थे वो, और किसी को दिखते नहीं थे। तो वो भगवान से बात करते थे, भगवान से खेलते थे, हाँ समझो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अदृश्य हो, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको खिला रहा हूँ, आप मुझे खिला रहे हो, लेकिन आप किसको नजर नहीं आ रहे हो, लोग क्या कहेंगे, मैं पागल हूं, है ना, ऐसे ही ऐसे हुआ था कुछ, ऐसे आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि कैसे कैसे हुआ होगा उस समय। तो ये हमेशा चतुर्भुजदास के साथ खेलते थे, मूर्ति से बाहर निकल के ना उनके साथ खेलते थे, मजा करते थे, हंसते खेलते थे, खिलाते थे, खाते थे। तो लोग देखते थे कि कुम्भनदास का लड़का जो है बिल्कुल पागल है, क्या क्या करते रहता है, कुछ उसका कुछ तर्क ही नहीं है कुछ। एक दिन ठाकुर जी बाहर आए मूर्ति के और बोले, चतुर्भुज घोड़ा बन जा, आज मुझे घुड़सवारी करने का मूड है। तो तुरंत घोड़ा बन गए वो, भगवान सवार हो गए उसके ऊपर और उसको ऐसे एक दंडी लेके ऐसे पीट भी रहे हैं उसको, चल चल आगे चल चल चल, और ये जा रहे हैं। अभी लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, ये अपना घोड़ा बन के जा रहे हैं, हंस रहा है, बोल रहा है, कुछ कुछ बातें कर रहा है पागलों की तरह। तो बहुत देर तक मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में ना गोल 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 घुमाया भगवान ने उसको। तो चतुर्भुज बोला, देखो कन्हैया, लघु शंका का वेग आ रहा है, बहुत देर तक घुमाया तुमने, अभी मुझे लघु शंका करने का दिल कर रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे घोड़ा बने हो ना, घोड़ा की तरह करो। घोड़ा कुछ समझो, कुछ सामान लेके जा रहा है तो उसको भी ब्रेक मिलता है, वो अपना उसमें ही चलता है सब उसका काम, 1 2 नंबर 1 नंबर 2 सब कुछ साथ में चलता है, घोड़े की तरह करो तो फिर वो शुरू हो जाता है। अभी मंदिर में ये घोड़े के रूप में आप पहले से नाटक कर रहा है ना, आपकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, उसमें से धार भी निकल रही है, पूरे मंदिर में जा रही है और ठाकुर जी हा 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 करके हंस रहे हैं और ये परेशान है बेचारा, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। और तो जैसे ही वो करता है ना लघु शंका, तो पुजारी आके उसको पीटना शुरू कर देते, बहुत पीटना शुरू करते हैं वो, बहुत मतलब अब तक तो ठीक था इसका मजाक और इसका पागलपन तो ठीक था, ये तो हद हो गई आज, हाँ मंदिर में ये सब करना। तो कुम्भनदास को बुलाते हैं, तेरे बेटे को अभी यहां से भरी कर देते, कभी मंदिर में एंट्री देंगे नहीं, बहुत सह लिया हमने तुम्हारे बेटे का। तो कुम्भनदास भी परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है। अरे कुम्भनदास को पता रहता है कि हमारे बालक क्या स्थिति में है, और जब उसको डंडा लेकर पीट रहे हैं पुजारी लोग, तब ये उसके घोड़े से उतर कर ताली बजा रहे हैं और वो देख रहा है उसको कि ठाकुर ताली बजा रहे हैं, अब मुझे पीटा जा रहा है, बोले बचाओ कुछ क्या करो मेरे लिए। तो वो हंस रहे जोर जोर से और वो पीट रहे हैं, और बाद में समाज बैठती है और मुकदमा होता है कि इसको बरी कर दो, बहुत हो गया अभी। तो ये सब दिन में हो जाता है, ठाकुर ताली पीट के चले जाते हैं, फिर मूर्ति हो जाते हैं। फिर रात में जब विट्ठलनाथ जी उनको शयन करा रहे हैं, तो विट्ठलनाथ जी से बात करते हैं ठाकुर जी, देखो चतुर्भुज मेरा भक्त है, मैंने घोड़ा बनाया था उसको, मैंने कहा था जो करो, जो उसने किया, उसको मंदिर में बंद करने का कोई काम नहीं है, मेरा भक्त है। जाके भाग के जाके कुम्भनदास की माफ़ी मांगते हैं, और चतुर्भुजदास की ऐसी बहुत सारी लीलाएँ फिर आगे भी चलती रहती हैं, और भी बहुत सारी लीलाएँ हैं जो मैं यहाँ पर कह नहीं सकता, लेकिन है ऐसे साक्षात भगवान के पार्षद थे सब लोग, सूरदास, चतुर्दास, चतुर्भुजदास, उसके पिताजी कुम्भनदास जी, ऐसे ऐसे भजन लिखे उन्होंने, ऐसे सुंदर भाव है उनका कि आप हैरान हो जाओगे उसको देखकर। तो ये इस भूमि का विशेष लीला है, इसमें हम इतना ही समझ सकते हैं कि हम लोग इसके लायक तो बिल्कुल भी नहीं हैं, हमारे अंदर तो अभी तक काम वासना इतनी भरी हुई है, इतना क्रोध है, इतना लोभ है, इतनी ईर्ष्या है, द्वेष है, हम तो दूर दूर तक भी नहीं इसके पास में कहीं, फिर भी हमको इस धाम में प्रवेश देते हैं ठाकुर जी, सेवा देते हैं। तो हम लोग केवल एक ही कामना करते हैं, हृदय शुद्ध हो जाए हमारा, आपकी सेवा मिलती रहे बस, और लीला सुनना है, लीला का भी दंडवत करना है, लीला को भी दंडवत करना है, लीला को भी पूजन करना है आदर से साथ, यू टू वर्शिप द लीला इन द हार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।